बतला रहे हैं कि भागवत में स्वकिया भाव की उद्देश्य सबके कृष्ण ने स्वयं भी बतलाया और स्वर दिया और जनता स्तन फलगु कृष्ण स्त्रियों के लिए वो पति का भाव कहीं भी हो तो अस्वाद्य अर्थात पति प्राप्ति नरक कर जाए और जब और बड़ा भारी उसमें अपमान होता है अपजप का कारण होता है। फलगु देखने में तो किंतु दुख उसको कहते हैं फल। आदमी समझता है प्रीति करता है वो पति के साथ किंतु ऊपर से देखने पर भी प्रीति वहां दुख का कारण है। कृष्ण अत्यंत दुख को कितनी विघ्न बाधाओं को अपने सिर पर लेकर के करना पड़ता है यहां तक कि उसमें प्राण भी जा सकता है। कहीं बंधु बांधवों ने कहीं घर वालों ने देख लिया तो उसे जान से खत्म कर लिया और भयावहम इस लोक में तो ही है उस लोक में भी बड़ा भयावह दुर्गुप्त निंदन घृणित सर्वत्र लोक परलोक में कहीं भी यह संकट न भागवत वर्ष 1936 में ये बतलाया गया। कृष्ण ने स्वयं भी कहा। दूसरी बात भागवत के जो मूल श्रोता है मुख्य श्रोता और वक्ता दोनों ने इसको खराब कहा इसलिए कृष्ण में और गोपियों में कभी भी औपति का भाव संभव नहीं है। क्यों परीक्षित जी ने कहा है आप कथा मूर्जुपति कृष्ण वही जुगम है। अरे कृष्ण तो भगवान है सर्वेश्वर है और धर्म की प्रतिष्ठा के लिए आए हुए हैं और सबसे बड़ी बात है आपका काम है उनकी कोई कामना बाकी नहीं वो तो स्वयं परिपूर्ण है। आपका काम और
आत्मा रमण
और आत्मा में रमण करने वाले उनको तो दूसरे चीज की जरूरत नहीं अपने सुख के लिए। हम लोगों के लिए है मान लिया कि हम अकेले में निर्जन में एक दिन रहेंगे दो दिन ना हो तो रहेंगे तीन दिन भी रह जाएंगे इससे अधिक नहीं रहेंगे बिना बोले रहेंगे नहीं होगा तो पैरों से बोलेंगे पौधों से बोलेंगे पशु पक्षियों से बोलेंगे बोले या कोई नहीं रहेगा तो अपने आप संग बोलेंगे पागल हो जाए। कृष्ण को दूसरी चीज का सहारा अपने आनंद के लिए लेने की जरूरत नहीं है वो स्वयं स्वयं में परिपूर्ण है सब विषय इसलिए वो आप कथा उनकी समस्त कामनाएं परिपूर्ण है इसलिए उनको हम लोग को आकांक्षा है किसी प्रकार की उनको किसी प्रकार की आकांक्षा नहीं है इसलिए आप काम व्यक्ति के लिए किसी दूसरे की सहारा लेकर के अपने आनंद उपभोग करना यह संभव पर नहीं इसलिए कृष्ण गोपियों का सहारा लेकर के ही आनंद उपभोग करेंगे तब तो आपको काम रहे नहीं इसलिए ऐसी बात नहीं। जदुपति वो तो जदुपति है ना जदुपति क्या इसलिए जदुपति है क्योंकि 16,000 तो महिषियां हैं किंतु किसी के वशीभूत नहीं किसी के नहीं वशीभूत उनकी कोई जरूरत नहीं है। रुक्मिणी को कैसे कर दिया ना थोड़े समय बस कर दिया जैसे तुम्हारी ज्ञान इच्छा उन्हें जा सकती यदि कहो तो मैं खुद ही तुम्हें लेकर के रख कर बैठा करके और तुम जिसके यहां को मैं वहां पर बस रुक्मिणी जी मुक्ति सत्यभामा को कहा जी से इसको बाहर कर दो
दुष्ट
बाहर कर दो और किसको बात किया, वो ऐसे आत्माराम होकर के जतुओं के पति होकर के भी धर्म की प्रतिष्ठा करने वाले होकर के स्वयं आत्माराम होकर के स्वयं भगवान होकर के सचिदानंद घन होकर के भी सुतवान वैद्य गुप्तम क्यों उन्होंने ऐसा खराब काम किया, ये निंदनीय काम किया। इसलिए परीक्षित महाराज की दृष्टि में कृष्ण का वह कार्य गोपियों के साथ में नित्य रात और उनके साथ में एकांत में मिलन ये व्यवस्थित है, निंदनीय। इसलिए कृष्ण ऐसा क्यों किया, बहुत जैसे परीक्षित महाराज जो मरने बैठे हैं और भगवान की लीला कथा सुनने चाहते हैं तो उन्होंने जब ये प्रश्न किया तो उनके अंदर में जरूर भावना होगी, वशिष्ठ ठाकुर और सब लोगों ने ऐसा दिया है, उनके अंदर में ऐसी भावना नहीं थी। किंतु देखा जी वहां पर जो बैठे हुए हैं सब लोग उसमें ज्ञानी हैं, कर्मी हैं और संपन्न है, उसे धार्मिक प्रवृत्ति है, तो उन लोगों के हृदय में ये भावना आ सकता है, अरे कृष्ण भगवान होकर के भी और ऐसा कर्म किया, जैसे कि अभी भी आज समाधि लोग बंकिम चंद्र जैसे साहित्यकार और सब लोग कृष्ण पर यह दोष लगा आदर्श सोचा जिसे क्यों किया। 10, 35, 28 वे अध्याय में जब ये सुना जब कृष्ण उनके साथ में रमण कर रहे हैं, उनके पैर छू रहे हैं, उनके श्वेत बिंदु पोंछ कर रहे हैं, अरे ये कृष्ण कामी बन गए, ऐसे उनकी धारणा हो सकती है। इसलिए परीक्षित महाराज ने सबके सामने ये प्रश्न कर दिया, उन्होंने क्या उत्तर दिया,
उत्तम पुरस्कार।
उन्होंने कहा अरे ये तो मैं पहली बार ला चुका हूं, तुम समझता नहीं, उनको झड़प दी। अरे बोला जैसे अग्नि सब तरह की चीजें खा जाती है, गंदा मंदा पैखाना टट्टी सब और पवित्र बनी जाती है, तो तेजियांशन न दोषा तेजी व्यक्तियों के लिए ये सब कृष्ण संग परमेश्वर वो सब अग्नि को हट, जैसे अग्नि अच्छा बुरा सभी चीज को खा करके पवित्र बनी जाती है, इसी तरह से उनके और कोई विशेष उत्तर नहीं। इन बच्चनों के द्वारा औपपत्य का जो दोष चिंतित हुआ, दोष जो कहा गया कृष्ण भिन्न अपर मैं के संबंध में वो धरना चाहिए कौन का राजीव उत्तर है, ये जो बातें हैं ये श्री गोस्वामी कह रहे हैं, ये सब अभी जो कुछ कहेंगे उनकी युक्ति समझना, हमारी युक्ति मत समझना या दूसरे तो करें, जैसे ये सब जो कहा गया है यदि कृष्ण को छोड़कर के दूसरे के संबंध में बातें होती तो वो दोष था, किंतु कृष्ण के लिए दोष नहीं। क्यों, अरे अपनी स्त्री के साथ में वो जिस प्रकार का व्यवहार करे पति, चाहे वो पति की भांति करे या अपने पति की भांति करे, इसमें किसी को क्या लेना देना है, क्या लेना देना है। यदि कोई व्यक्ति एक दूसरी कोई स्त्री को भगाकर लेकर और कश्मीर की घाटी में जाता है, इधर उधर घूमता है, तो उसके लिए तो दोष है, और अपना पति ही उसको अपनी पत्नी को विवाह के दूसरे दिन ही उसको लेकर के चला गया और वहां पर दर्शन करा, जैसे कि वो कपिल देव जी के पिता कर्दमृति देवभूति को लेकर के विवाह के बाद ही वो चले गए और भारत वर्ष के विश्व के जितने सुंदर रमणीय स्थान हुए उनको लेकर के उनको दर्शन, इनके लिए दोष नहीं है, वो तो अपना पति है। इसलिए कृष्ण सभी के हमारे तुम्हारे विश्व के जितने भी प्राणी हैं, वृक्ष लता गुल्म पशु पक्षी मनुष्य स्त्री पुरुष सबके वो पति है, इसलिए कृष्ण के लिए दोष है, किंतु और दूसरों के प्रति होने से ये दोष है। कृष्ण के संबंध में ये सब दोषों की आशंका नहीं है, क्योंकि मधुर विशेष का साधन करने के लिए कृष्ण ने अपनी पत्नियों को ही इस रूप में रखा, उनके भाव दिए और इनके अंदर में भी वो भाव कर दिया। ये कहानी शायद हमने कहीं कहा होगा, लौकिक कहानी, किसी समय एक लड़के की शादी हुई, किसी धार्मिक ग्रंथ में लड़के की शादी, लड़की बड़ी सुंदरी है, लड़का भी बड़ा सुंदर। जब लड़की पति के घर में आई तब तक उसका किसी दूसरे से कुछ प्रेम हो गया। अब ये अपनी स्त्री को प्यार नहीं करे और स्त्री के साथ में न रहे और इधर उधर डोलता रहे। तो स्त्री ने कहा जिससे ये तो ठीक बात नहीं। तो उसने क्या किया, ये अपने मायका चली गई अपने पति के पास पिता के घर में चली और पिता से परामर्श करके, मैया से परामर्श करके, भाइयों से परामर्श करके बाजार में एक, जिस बाजार में वो जाता था उसका पति, एक घर किराए पर ले और वहां पर ऐसे बन संकर के सुंदर बन करके वहां पर रही और इसी की तो है इसे बातचीत नहीं करते। वो आता तो उसको दुख काट देती। धीरे धीरे वो सबसे आसक्ति छोड़ करके इसी के पास, उसको पहचानता नहीं कि हमारी स्त्री है। और धीरे 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 अत्यंत इसको वशीभूत कर दिया। वशीभूत करने के बाद में सब इसको पीछे से बताया, जबकि एकदम उसके साथ में मन मिल गया, सब उसने बतलाया जब मैं वही तुम्हारी विवाहिता स्त्री हूं। इस तरह से उसको फटा करके फिर ले गया। अब ये उसके लिए दोष है कि नहीं, वो तो बेस्या का रूप बनाया अपना, तो उसका बनाना ये दोष युक्त हुआ कि नहीं हुआ। बेस्या बनना तो दोष है, किंतु बेस्या अपने पति के लिए ही बन रही है, इसलिए वहां पर दोष आना। ये दूसरों के साथ में यदि होती पति को छोड़ करके तब तो वो बहुत सुलंगारणी थी, किंतु अपने पति को दुरुस्त करने के लिए ऐसा किया। ऐसे गोपियां यदि कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए अपनी होकर के भी विवाहिता स्त्री या अपनी स्वकिया होकर के भी कृष्ण को इस प्रकार से जैसा वो चाहते हैं हरास कर रहे हैं, दुर्वत्ता से मिल रहे हैं, ये जो था, किंतु दूसरे के प्रति इनका होता तो जरूर। विशेषकर गोपियों के साथ में कृष्ण का नित्य दाम्पत्य संबंध है। ये जो स्वामी का दाम्पत्य है किसको कहते हैं, अग्नि को साक्षी देकर समाज के सामने जब पति पत्नी का हाथ ग्रहण करता है, पानी ग्रहण करता है शास्त्रीय विधियों के साथ में, तो उसको कहते हैं पति और पत्नी, इसको कहते हैं दाम्पत्य भाव। कहते हैं ब्रह्म संहिता में ऐसा लिखा गया है, आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी निज रूप और कला भी मैंने शक्ति ही अपनी शक्ति, कैसे कृष्ण जैसे सच्चिदानंद हैं ये भी उनकी कला माने उनकी शक्ति है, उनकी दंपति जोड़ी है दोनों की। निज रूप पया का अर्थ मैंने किया है स्वदारत्वेन एव, स्वदारत्वेन, दारत्वेन माने क्या, पत्नी, पत्नी के रूप में दारस्ते हैं, दारा कहते हैं दारा पत्नी जो विवाहित हो देश विधि से, दारस्ते न तू प्रकट लीला होता, प्रकट लीला में जैसा हुआ तैसा नहीं, मैंने स्पष्ट कर देते हैं कहते हैं, किंतु स्पष्ट मैंने सबके लिए नहीं, जो अनाधिकारी हैं उनके लिए पीछे ये बतलाए। तो प्रकट लीला में जैसे विवाह हुआ कहीं और ये समस्त गोपियां अपने घरों को छोड़ करके और कृष्ण बंसी के वादन के समय सबको छोड़ करके कृष्ण के पास नहीं पहुंचे और कृष्ण कहते हैं अपने घर में जाओ अपने पत्नियों की सेवा। इसलिए कहते हैं कि प्रकट लीला की तरह नहीं, अप्रकट लीला में नित्य उनका स्वदारक स्वभाव है, पर दारक तो व्यवहारणी की अर्थ वहां पर केवल माया प्रत्यय प्रत्ययित भाव, माया प्रत्ययित भाव, माया प्रत्ययित माने है नहीं किंतु माया के द्वारा ऐसा प्रत्यक्ष हो रहा है, उसको कहते हैं माया द्वारा प्रत्ययित भाव। है नहीं कुछ, लड़का मरा नहीं, नहीं? यही पास में कुछ वर्ष पहले एक कलकत्ते से कोई बीसी राय या कौन आया था, वो दिखला रहा था जादू, तो वो ऐसा किया है, वहां पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सुपरिंटेंडेंट और पुलिस सबको बुलाया गया, बहुत सुंदर संजोग बनाया था, उसमें बड़े बड़े लोहे के बॉक्स रखे थे और उसमें 10 ताले लगाए थे, उसने ताले वाले को खोल करके ऐसे उलाट करके रख दिया बच्चे को और कहा कि देखो ये मेरा लड़का है और इसको मैं बक्से में करता हूं काट कर और देखो उसको बुलाऊंगा और देखो ये पैसे क्या बस सबके सामने में एक कपड़ा के अंदर में उसको ढक दिया बच्चे को और एक बाहर से चूरा निकाला और उसके गले पर देने लगा। लोगों ने देखा कि रक्त इधर उधर हो रहा है, लड़का आ कर रहा है, इसके बाद में गले को अलग कर दिया और शरीर को अलग और लेकर के दिखला दिया मुंड और रूंड और लेकर के बक्से में अपने हाथों से खून से लग और उसके बाद में एसपी को कहा कि जरा इस ताले को बंद कर देना, तो इसमें बड़े बड़े लॉक डिस्ट्रिक्ट में आप ये दूसरा ताला दे दीजिए और किसी एक नागरिक से कहा कि सुन एक ताला 4-5 ताले उसमें लगा दिए, इसके बाद में उसको भर दिया। इसके बाद में कहा अरे बेटे इधर आ जा, बेटे इधर आ जा, उसका नाम पकड़ सकते कुछ नाम पकड़ते बेटे इधर आ जा, तो लड़का बहुत दूर से बोलता है पिताजी मैं आ गया पिताजी आ गया। लोगों ने देखा जो वही लड़का जिस चार का लड़का था वहीं से बाहर से दौड़ करके और पिताजी के पास देखा, लोगों ने जैसे वो बक्से में बंद है और इधर
खोल के देखा बक्से में
खोल करके देखा तो उसमें है नहीं कुछ। तो यदि साधारण एक मदारी ऐसा कर सकता है तो कृष्ण जी ये सब करना क्या है बात है, कुछ योग माया के प्रभाव से इसी को कहते हैं माया प्रत्ययिक भाव। उसने कुछ किया नहीं, आंख बंद करके और कौशल हाथ की सफाई उसने दिखलाई। इसी तरह से सब मदारी लोग ये सब काम करते हैं। तो गोपियों का नित्य दाम्पत्य भाव है, ब्रह्म संहिता में कहा गया आनंद चिन्मय रस प्रतिभाविता भी रूपतया सदा भी। तो यहाँ पर निज रूपतया मैंने बतलाया स्वदारेण अतः उनके साथ में दाम्पत्य अभिमान चीरकाल है। कहाँ वहां तो वहां तक फिर आएंगे तो फिर अब विवाह की क्या जरूरत है दिखलाने की। जैसे किसी की शादी मथुरा में हुई और बॉम्बे किसी काम से गया तो फिर वहां उन लोगों की प्रतीति के लिए फिर वहां पर शादी करनी पड़ेगी, नहीं जरूरत नहीं। इसीलिए वहां पर नित्य उनका शादी है, इसलिए यहां पर आते हैं, यहां पर शादी की जरूरत नहीं है। इसलिए प्रकट लीला में जैसा हुआ गोपियां कृष्ण के पास में गई अपने पति को छोड़ करके जैसा कहा गया, ये प्रकट लीला में थोड़ा सा ये दिखलाया गया है, ये भी दिखलाया गया है माया के द्वारा भ्रम कराया गया, यथार्थ में विवाह शादी की स्थिति ऐसे ही। किम रस प्रतिभाविता भी परदारक स्वरूप लीला पोषण कर, कहते ये लीला का ये पोषण एक भाव ये थी, एक दंपति रूप में सुख और एक इस रूप में पार्थिव भाव। कृष्ण गोपियों के साथ में दोनों भाव गोलोक में करते हैं, नित्य उनका ये भाव, वहां पर नित्य सिद्ध स्वकीय भाव और यहां पर प्रकट काल के लिए दिखलाते हैं वो भी योग माया के प्रभाव। क्यों गीता में भी ऐसा बतलाया गया कृष्ण की जितनी भी लीलाएं होती हैं हमारा जन्म इत्यादि वो होता है
योग माया समाप्त होते
नाहम प्रकार पर योग माया। योग माया के द्वारा मैं अच्छा भी तरह करके सब लीलाएं को करता हूँ जिससे कि इसको कोई ज्ञान नहीं पा, किंतु हमारा जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, दिव्य माने अलौकिक, इसको कोई समझ नहीं पा। वो समझते कि यहाँ पर जन्म हुआ ये लीलाएं थी, किंतु वो सब नित्य लीला है। परम लक्ष्य दे नित्य दाम्पत्य भिन्न अपर भावना, जब उनको ब्रह्म संहिता में परम लक्ष्य में कहा गया गोपियों को, कहाँ कहा गया देहु पड़म सम कल्प वृक्ष लक्ष्मी सहसम तथ ब्रह्म सिद्धमान लक्ष्मी सहस्र सत सत सहस्र संभ्रम सिद्धमान ये कोटि कोटि लक्ष्मियां एक एक गोपियों की सेवा करती है तो ये गोपी ये कोटि कोटि लक्ष्मियों की भी आराध्या है परम देवता ये के लिए इसलिए उनका दाम्पत्य के अतिरिक्त तो और कोई था लक्ष्मी किस लिए कहते हैं जो विवाह सूत्र में सप्त में बदली है ये इन लोग जब उनके द्वारा उपास्य हैं तो वो भी जरूर ऐसा होगा इसलिए उनका नित्य दाम्पत्य है। इसलिए प्रापंचिक प्रकट लीला में गोपियों के पर दारत्व माया विजृंभृत मान माया विजृंभृत माने माया का एक खिलवाड़ है एक खिलवाड़ कर दिया भगवान ने दिखा कृष्ण को बाण नहीं लगा और जो महामाया ने दिखलाया ये बाण ऐसे कृष्ण श्री कृष्ण गोपियों के पति कृष्ण को गोपियों का पति कहा गया गौतमीय संत में कहा गया अनेक जन्म सिद्धानंद गोपी नाम पतिरेव वा नंदनंदन इत्युक्त त्रैलोक का आनंद वर्धनम गौतमीय तंत्र है प्रमाणिक ग्रंथ है उसमें कहा अनेक जन्म सिद्धाना अनेक जन्मों में कठोर तपस्या करने के बाद में आराधना करने के बाद में जो गोपियां सिद्ध हुई उनके पति रेववा निश्चित रूप में उनके पति ही कृष्ण चंद्र है नंदनंदन उनके पति हैं इति उक्त त्रैलोक्य आनंद जो कृष्ण त्रैलोक का आनंद वर्णन करते हैं उस कृष्ण में इनका पति भावी का प्रथा श्रीमद भागवत में भी कहते हैं 10:33:33 गोपीनां तत्पतिनां च सर्वेषां चैव देहिनां जो अंतश्चरति तो अध्यक्ष एक कृण देहभाग जब राजपंच अध्याय समाप्त होता है तो अंतिम अध्याय में जी गोस्वामी कह रहे हैं तो उसमें लिखा सुखदेव गोस्वामी ने या बतलाया या परीक्षित महाराज जी को बतलाया क्या बतलाया गोपी नाम सत्पति नाम सर्वेशां सर्वेशां एवं देही नाम जो अंतश्चर्चित अध्यक्ष एक अकेलम था परीक्षित महाराज जी को सुखदेव गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं गोपियां हर्ष में लौट सकते हैं कितने दिन के बाद में लौटी ब्रह्मा के एक दिव्य रात के बाद तक कोटि कोटि करोड़ों वर्षों तक यह रात लीला एक रात में कोटि कोटि रातें समाज और ये रात पूरी रात रात लीला इतने वर्षों के बाद में गोपियां घर में लौट उन पतियों ने आज बहुत दिनों के बाद आए थे गोपियों पर अनादर नहीं किया उनको डांटा दस्ता नहीं उनको कोई कड़वे अपमान भी नहीं किए उनको बड़े आदर के साथ में रखा क्यों रखा उसमें बतला रहे हैं इसलिए कि जोग माया ने उनकी एक एक की प्रतिमूर्ति उनके पतियों के पास में इतने दिनों तक रखा इसलिए उन लोगों ने समझा था कि हमारे पास ही में तो थी कहीं गई नहीं और दूसरी बात उसका उदाहरण देकर के बतला रहे हैं गोपीनाथ वो जो गोपियां हैं सब पतिनांश और उनके जो पति हैं और सर्वेशां विश्व के जितने भी स्त्री पुरुष पेड़ पौधे पक्षी कीट पतंग हैं जीवात्माएं हैं वो सर्वेशां च देहिनां ये देहियों के भी जो अंतश्चरति जो अंतर में और बाहर में जो अध्यक्ष हैं जो पति हैं सकृण देहभास उनके साथ में इनका विरोध कैसे होगा जो अंतर चढ़ने वाले जो अध्यक्ष हैं बाहरी शरीर के भी किरण देहभास उनके शरीर से क्रीड़ा करते हैं उनके अंतर में रमते हैं जो समस्त जीव प्राणी उनके पति और उनके सबके हैं, उनके प्रति दुर्हाचरण कैसे वो करेंगे। उन्होंने समझाती थे हम सब समय हमारे साथ में और उधर में के साथ में, इसलिए कृष्ण को कौन है जो हमारे सर हमारे अंदर भी बाहर भी सर्वत्र कृष्ण, इसलिए वहां पर दो कृष्ण के लिए दो सारो नहीं थे, वो उनकी पत्नियां ही हैं, हम सभी जीव मात्र ही उनके पत्नी हैं, शक्ति हैं, शक्ति के अंश हम हैं। तटस्था शक्ति भगवान की एक बड़ा शक्ति की एक आंशिक तुच्छ शक्ति, उससे हम परिणत हुए जीव, जीव मात्र ही आत्मा मात्र ही स्त्रीलिंग उनकी शक्ति जीव के लिए बतलाया गया। अपरा को बतलाया ये आठ आठ अंश वाली, ये जो है ये अपरा
भूमिरात
मनोवाद अहंकार अपरायण इतस्तु अन्य इतस्तु अन्य अन्य एक परा प्रकृति है वो जीव प्रकृति। इसलिए जितने भी ये जीवात्माएं हैं कोई पुरुष रूप में दिखता हो स्त्री रूप में दिखता हो सब उनके पति, इसलिए सबके पति वही कृष्ण है, इसलिए गोपियों का भी पति वही। श्री गोपाल तापनी में भी कृष्ण को इनका स्वामी बतलाया है, स्वामी माने पति होता है, जीव स्वामी का पति होता है, इसलिए गोपाल तापनी में भी ऐसा कहा गया स्व वो स्वामी भवती, कृष्ण जो गोपाल है वो सबके स्वामी है, इन गोपियों के भी स्वामी भवतु और माने ये पति होते हैं। लक्ष्मी गण के पार्थियत्व लक्ष्मी में कभी भी पार्थक्य संभव नहीं, लक्ष्मी जो है नारद के प्रति कभी भी उनका पार्थिय भाव नहीं कभी संभव नहीं। उसी तरह से श्रीकृष्ण बल्लभागण लक्ष्मी है, ब्रह्म संहिता में लक्ष्मी सहस्र शत ब्रह्म ये तो पहले बदला है। पांडव सब जिस प्रकार से पांडव माने क्या होता है अर्जुन प्रभृति होता है ना, पांडव प्रचुर प्रयोग व्यक्ति जीवन पांडव बोल रहे कौरव गण का भी बोल, पांडव गण से कौरव और पांडव दोनों का बोल, कौरव पांडव लोग लड़ रहे माने कौरव और पांडव दोनों। इसी तरह से यहां पर लक्ष्मी शब्द के प्रयोग में गोपियों का भी बोल, गोपियां कृष्ण से के पास में क्रीड़ा कर रही हैं किंतु है लक्ष्मी, इसलिए इसका प्रयोग ऐसा कर दिया गया है, किंतु लक्ष्मी के प्रयोग के द्वारा ही समझो जो पति का यहां पर प्रयोग अपने आप हो गया, इसलिए गोपियों का कौन का पर भाव असंभव। कृष्ण प्रतीक श्रीमती को अखिल लोक साक्षी बोलिया संबोधन कर कृष्ण ने श्रीमती राधिका जी को अखिल लोक साक्षी कहा है, अखिल लोक साक्षी में अखिल लोगों के लिए आप साक्षी क्यों जोग माया है इसलिए साक्षी स्वरूप में प्रकट लीला में उपपतिवत प्रतीयमान होना ही ग्रंथ में कृष्ण को उपपतिवत वर्णन हो, इसलिए प्रकट लीला में उपपति जैसा कृष्ण ने के प्रति उनका भाव देखा जाता है, इसलिए सुखदेव गोस्वामी ने प्रकट लीला के अनुसार ही ऐसा वर्णन किया है। बहु बार अनुसार प्रच्छन्नता समुद्रता एवं परस्पर परम दुर्लभता रसी संबंध शेष बुनिया जी रसशास्त्र दिए थे लौकिक रस शास्त्र संबंध थे, कहते हैं कि ये सब जो अलंकार शास्त्रों में ये सब का जो वर्णन किया गया है ये लौकिक संबंध में, वहां नहीं, वहां कृष्ण अपने आप सुंदर हैं, गोपियां आप सुंदर हैं, उनका मिलन चलन सब कुछ बड़ा महत्व, वहां के लिए ये सब का जरूरत नहीं। यदि यही कहो ये परस्पर मिल नहीं रहे तो ये दिखला रहे हैं रुक्मिणी सत्भावना से तो सब समय मिलते हैं, उनकी प्रेम में कमी होती है यदि रुक्मिणी सत्भामा वहाँ पर कोई भी निवारण नहीं, जब तक वो मिल सकते हैं, कोई भी वहाँ पर गुरुजनों का भय नहीं, उनके लिए समस्त शास्त्र भी आदेश दे रहे हैं, वो सप्त में रुक्मिणी के घर में बैठे हुए हैं, सभा से आते हैं रुक्मिणी के घर में, सत्यभामा के घर में, और बड़े प्रेम के साथ में रहते हैं, उनका प्रेम उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है, कभी मान कभी कुछ ये भी देखा जाता है, उसे उत्तरोत्तर मान उनका प्रेम बढ़ता है, तो यहाँ पर क्यों नहीं बढ़ सकता है प्रेम? इसलिए ये सब दूसरे शास्त्रों के लिए आया समझ में, वो पांच पीछे की बात जी गोस्वामी जो करें उसको समझो दुर्लभता एक दोनों में मिलने जा गुरुजनों का फल कोई चीज बाजार में है, जैसे कि परवल, अभी परवल क्या दर है, अभी 15-16 रुपया है, जिस समय की बड़ा मुश्किल से मिलता है, कलकत्ते के बाजार से यहाँ पर आता है, आने जाने का खर्च वहाँ पर 2 रुपया की और वही चीज यहाँ पर करके 50 रुपया की, आने जाने में कुछ सड़ गया कुछ ये हो गया वहाँ से ले आया उसमें समय लगा बेच रहा है तो वहाँ पर 20 रुपया 25 रुपया 30 रुपया 40 रुपया किलो, किंतु जब वहाँ पर अधिक हो जाएगा और चारों तरफ में भी होने लग जाएगा तो वो घट करके वो 8 आना भी बिक सकता है, जब सहज उसमें हो जाएगा। अभी यहाँ पर पानी मान लेती है, पानी यहाँ पर चारों तरफ में खारी रहे और मीठा पानी नहीं मिलता, तो मीठे पानी का मूल्य कितना एक बाल्टी का हो जाएगा, बहुत कुछ, और जब सहज रूप में मिलता है तो उसका कोई मूल्य नहीं, तो इसी प्रकार से दोनों का मिलना यदि भारी मुश्किल है राधा कृष्ण का या गोपियों का कृष्ण के साथ, उसके लिए दोनों उसके लिए बहुत प्राण से ही चाहते हैं कि कैसे उसमें प्रेम बढ़ता है। इसलिए प्रकट लीला में कुछ दिखाया गया, किंतु कृष्ण के लिए गोपियों के लिए ये बात ठीक नहीं थी, यह है केवल लौकिक वो जो कुछ उदाहरण दिया, वहां पर तो इतने सुंदर परस्पर है, स्वाभाविक प्रीति है जो वहां पर इन सब चीजों की कोई भी आवश्यकता नहीं, जैसे उदाहरण दिया रुक्मिणी सत्यभामा का कृष्ण का सब समय मिलन हो रहा है तो भी आनंद बढ़ रहा है, सखाओं से तो सब समय मिलते हैं उनका प्रेम कम जाता है या बढ़ता रहता है, यशोदा मैया सब समय कृष्ण को देखती है, उनके लिए कृष्ण को देखना बाधा है कहीं तो उनका प्रेम क्यों नहीं घट जाता बार बार मिलने से, अजय नहीं ये कह रहे हैं हमारे इसलिए लौकिक रसशास्त्र में ही उसके लिए वो सब उतना है, अपराकृत कृष्ण रस के लिए ये सब चीजें नहीं। समर्थावती में निवारण इत्यादि नाथा का सत्य श्रृंगार जथे, इसलिए इस अपराकृत कृष्ण रस में ये सब चीजें भी न रहे कोई भी बात नहीं, वहां पर अपने आप प्रेम ही इतना अधिक है कि प्रेम कम नहीं होता बल्कि बढ़ता जाता है, यह समर्थक इन सबकी जरूरत नहीं है। इसलिए हर बल संप्रदाय में निम्बार संप्रदाय में वो लोग विप्रलंब भाव मानते ही नहीं, एकदम विश्व सब समय मिलन की वो भावना, समर्थारथी ने मदनक इत्यादि भाव फरकाकर उसमें वहां पर परिलक्षित होता है, इसलिए वहां पर उपभोक्ति भाव की कोई भी आवश्यकता नहीं है प्रकट लीला, इसलिए उसको माया विद्य रूढ़ भी कहा जाए। उपसंहार में कहते हैं स्वेच्छया लिखितम, हमने उज्जल नदी की रोचनी नामक टीका जो हमने की उसमें किंचित स्वेच्छया लिखितम किंचित हमने कुछ अपनी इच्छा से लिखा है, अपने से इच्छा से जो लिखेंगे वो यथार्थ सत्व को लिखेंगे, और किंचित अत्र परेच्छया, और किंचित लिखा है हमने कुछ परेच्छया, परेच्छया माने अनाधिकारियों के लिए उनके अधिकार के अनुसार में जानबूझ करके हमने ऐसा कुछ लिखा, ऐसे कुछ लिखा ऐसे। यत् पूर्वापरम संबंधम तत् पूर्वम अपरम परम, पूर्वापर संबंध युक्त जो अंश है, जो लिखा हमने दूसरों की इच्छा से उसको सप्त पूरा मत मानना, आंशिक सप्त मानना। हमने जो पूर्व और अपर माने पीछे दोनों को संबंध युक्त ठीक कर करके अपने विचार से जो लिखा है उसी को सप्त माना। पूर्वापर संबंध युक्त अंश ही अपनी इच्छा से शिक्षक अंश लिखा है, और इस रूप संबंध शून्य होने पर परीक्षा के द्वारा लिखा, दूसरों की इच्छा के लिए, दूसरों के उपकार के लिए हमने ऐसा लिखा। क्यों लिखा? कि अनाधिकारी लोगों ने कहा श्रीमद् भागवत में ये इस प्रकार का भाव क्यों आएगा, उत्पत्ति का भाव, ये तो आना नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं आना चाहिए। क्यों? अनाधिकारी। और उनसे दूसरे लोगों ने कहा अरे श्रीमद् भागवत में सर्वत्र श्लोकों में इसका वर्णन है, तो मैंने हाँ ऐसा है। उनको दुमुखा नहीं कहा जाएगा। क्यों? इसलिए जो लोग अनाधिकारी हैं उन लोगों के लिए कहा गया ये ऐसा नहीं हो सकता, कृष्ण किसी की उपपत्नी जीव मात्र के ही वो पत्नी है, हमारे भी पत्नी है, दूसरों के भी पत्नी है, सबके पत्नी। और वहां पर जो इस प्रकार के अधिकारी थे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर इत्यादि जो बैठे थे उनके लिए कहा क्या, भागवत में जो लिखा है वही शब्द है और बाकी सब माया बीज। और उन लोगों के लिए कहा वो जो कहते हैं वो माया बीज मुझित है और बाकी ये थी, किंतु दोनों ही अपने अपने स्थान पर थे, उनका अपना जो भाव है वही। अब उनका अपना शुद्ध क्या भाव है, अब अपने सुनों ने नहीं कहा कि सुना चक्रवर्ती ठाकुर जी शुद्ध। आप लोग थोड़ा सा इसमें से जो ग्रहण हो सके उसको ग्रहण, इसलिए कि आजकल ये सब विचार प्रज में इधर उधर सब चल रहे हैं स्वकीय अभाव ही, इसलिए मैं ये थोड़ा बहुत पहले एक सभा में अभी उनको बुलाया गया था, मैं नहीं जा सका, वहां पर थोड़ा सा
राफा दामोदर,
इसलिए मेरी इच्छा थी जैसे कभी जब स्टूडियो आएगा तो थोड़ा सा हम आगे। तो हम लोग प्रेम भक्ति चंद्रिका पढ़ रहे थे, उसमें पसंद आया, इसलिए आप लोगों के भी यदि कहीं ऐसी कोई बात हो तो तुम लोग उसमें भ्रम में मत पड़ जाना, इसलिए ये सब चीजों को बतला रहा। अब इतना चक्रवर्ती था, इनकी टीका का नाम है क्या, विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी की उज्ज्वल दुर्गम संग मन क्या है, तो उसमें विचार कर रहे हैं स्वकिया के पक्ष में व्याख्या जीव बात का भी प्रेम नहीं हो सकता। जी गोस्वामी ने जो बतलाया है कि श्रीमद् भागवत का जो राजपंचाध्याय इत्यादि का जो प्रसंग है, और यहां पर हमारे रूप गोस्वामी जी इस श्लोक को जो कह रहे हैं, इसमें जीव गोस्वामी जी ने जो स्वकिया का पक्ष लेकर के सब लोगों के लिए बतलाया है ये कृष्ण से ही गोपियों का विवाह हुआ था और यही ठीक है, ये जो कहा ये कभी भी जीव गोस्वामी की आंतरिक व्याख्या नहीं हो सकती। कौन कह रहा
है?
क्योंकि ये रूपानुग में सबसे श्रेष्ठ और प्रथम है। रूपानुग किसको कहते हैं? जो रूप गोस्वामी का अनुग है, अनुग अनु माने पीछे पीछे चलने वाला, जो उनकी भावनाओं के अनुसार में चलने वाला है, वो कभी भी रूप गोस्वामी के इन विचारों का अन्यथा नहीं करता, इसलिए जीव गोस्वामी की ये विचारधारा अपनी नहीं है। ये परीक्षा आदि क्योंकि जीव गोस्वामी ने तुम ही परीक्षा लिखा है, इसलिए जीव गोस्वामी ने अपनी अपनी लेखनी के द्वारा इन्होंने कहा किंचित लिखितम किंचित लिखितम परिचय, इसलिए ये परिचय के द्वारा उन्होंने ऐसा लिखा। भिन्न रुचि लोगों के लिए यह दुर्गे अचिंत लीला निर्दोष प्रतिपन्न हो, इसलिए उन्होंने ऐसा लिखा। अर्थात जो लोगों ने भजन नहीं किया कभी इतने ऊंचे उस सिर पर रख करके और वैष्णव का संग नहीं किया, भगवत भक्ति का तत्व नहीं जानते हैं, ऐसे निर्बोध लोगों के लिए भी इस अचिंत लीला को निर्दोषत्व साबित करने के लिए ये दोष लीला में कहीं भी दोष नहीं, ऐसा नहीं। क्योंकि उन्हों की दृष्टि में ये लीला दोषपूर्ण है, इसलिए ऐसा समझ करके ही स्वकीय पक्ष में ही उन्होंने श्रीमद् भागवत में भी बहुत से श्लोकों का और उज्ज्वल नैतिक से श्लोकों का इस तरह से व्याख्या, श्रीमद् भागवत में भी बहुत से श्लोकों की व्याख्या उन्होंने इस प्रकार से। हेलो सर, श्रीमद् महाप्रभु चरणा जी चरणों के जो अनुगमन करने वाले और उन्हीं को प्राणिमान समझने वाले अंतरंग भक्तों के लिए इस प्रकार से व्याख्या युक्ति युक्त नहीं, संत दामोदर के लिए, राय रामानंद के लिए, सनातन प्रभु के लिए, रूप गोस्वामी के लिए और उस समय के सर गोस्वामी थे, लोकनाथ गोस्वामी थे, भूगर्भ गोस्वामी थे, इन लोगों के लिए कभी भी, नरहरि सरकार थे जिन्होंने ग्रंथ लिखा है, कवि कर्णपुर थे, ऐसे ऐसे जो बड़े बड़े विद्वान महाप्रभु के अत्यंत अंतरंग भक्त हैं वो कभी भी ऐसा नहीं। अब वहां से आरंभ कर औपपत्य श्रीमद् भागवत का श्लोक में औपपत्य और धर्म स्पर्शी और नरक जनक, यहां प्राकृत नायक के पक्ष में है किंतु धर्माधर्म नियामक, धर्म और धर्म का नियामक चूड़ामणिन्द्र श्री कृष्ण की वो आशंका में कहा, कृष्ण वो आशंका कहा, ये तो छोड़ दो, साधारण रूप में महाभारत का युद्ध हो रहा है, कर्ण ने महाराज युधिष्ठिर का अपमान किया, उन्होंने कौंती के निकट में प्रतिज्ञाबद्ध मैंने प्रतिज्ञा की थी, अर्जुन को मारने के अतिरिक्त और चार भाइयों का मैं वध नहीं करूंगा, अपमान कर दूंगा किंतु वध नहीं करूंगा, वध करूंगा तो जिससे कि मैं तुम्हारा या तो मैं ही तुम्हारा पुत्र रहूं या
अर्जुन
पांचों हम सब समय, मैं मर गया तो अर्जुन और अर्जुन मर गया तो तुम्हारा
मैं
तृतीय पुत्र मैं, इसलिए मार लिया। एक दिन युद्ध में कर्ण ने अर्जुन को कहीं इधर उधर भटका दिया और रह गए ये लोग बस, युद्ध में महाराज युधिष्ठिर को अपने वो जो होता है
धनुष
धनुष से संदा लेकर के उनके गले में डाल दिया, धनुष से रस्सी होती है उपलब्धि लेकर के उनके गले में देकर को फेंक दिया, यही इसी बल पर लड़ने चले हो जो करके मर जाना है, अर्जुन तुम्हारी कहां कहां रक्षा करे, आज अर्जुन को बुला लो, जाओ तुमको आज छोड़ देता हूं, फिर हमारे सामने कभी मत आना, जब तुम मुझे देखना उधर में भाग करके चला जाना, ऐसा अपमान किया और लेकर फिर छोड़ जाओ, आज को प्राण की भिक्षा दे रहा हूं तो छोड़। उन्होंने सोचा कि आज मर जाना अच्छा है, मर जाना है। ऐसा घोर अपमान हमारा जीवन में कभी नहीं, एकदम प्राण और उन्होंने आदेश दिया उसको अपने साथी ये रख लेकर हमारे शिविर उनको लेकर के पलंग पर लेकर, वही दृश्य सब समय आ रहा है, कर्ण ने हमको इस प्रकार से घोर अपमान और इस तरह की बातें बाण से बेच करके मार देता कोई बात नहीं है। आज उसके बाण
बाकर भी बाण चुभ रहा है
तो बड़े दुखी। अर्जुन उस समय में चारों तरफ में घूम करके देख रहे हैं कि आज हमारे विभीत कहां तो खोजने में आज कर्ण ने तो बड़ा विक्रम दिखलाया, कहीं हमारे भाई को मारना दिया हो। पीछे से पता लगा जिसे वो कुछ आहत होकर के अपने खेमे में लौट गए। बस वहां पर कृष्ण को लेकर के उनको देख वहां पर पहुंचे तो प्रसन्न मुद्रा से युधिष्ठिर महाराज उससे बोले, भाई तुम्हारा कल्याण, तुमने कर्ण का विनाश कर दिया ना, मार करके आए तो मैंने सोचा कि हमारे भाई का अपमान किया इसलिए कर्ण को मार करके सब लिया है। अब मैंने कहा नहीं तो मैंने तो कर्ण को मारा नहीं, तो बिना मारे ही चला कराया तू। एक बात करो, अभी तुम अपना गांडीव उनको दे दो और मैं अभी जाता हूं। तुम ऐसे ही जड़े निकले, तुमने युद्ध नहीं किया और हमारा तुम्हारा भाई हमको ऐसा अपमान किया, तुमने मारा नहीं और ऐसे ही चले आए। सुनते ही और कहां आनंद और कहां एक गमरोध से भर गए। गांडी थे गांडी फेंकने की बस देखा जब मैं अभी मारूंगा युद्ध जो कृष्ण के साथ ही तो बड़ी भारी बात, ये यदि युधिष्ठिर को मार देते हैं तब तो बड़ा बड़ी मुश्किल हो जाए, तब तो महाभारत युद्ध हो गए और उन्होंने पता है मैं जरूर इसको मारूंगा इनको मारूंगा। जब उन्होंने अपमान किया तो युधिष्ठिर